ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज।
रेडियो तेहरान के सम्मानीय श्रोता जहरा जैदी और साथियों का सलाम स्वीकार करें। प्रिय श्रोता मित्रों, कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र कुरान के सूरह लुकमान की 16वीं, 17वीं और 18वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से किया जा रहा है। कारी हैं श्री मुस्तफा इस्माइल।
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। लुकमान ने कहा, हे मेरे बेटे, यदि वो कर्म राई के दाने के बराबर भी हो, फिर वो किसी चट्टान के भीतर हो या आकाशों या धरती में, ईश्वर उसे प्रलय में सामने ले आएगा। निसंदेह ईश्वर सूक्ष्मदर्शी और जानकार है। हे मेरे बेटे, नमाज कायम करो और भलाई का आदेश दो और बुराई से रोको, और जो भी मुसीबत तुम पर पड़े उस पर धैर्य करो। निश्चय ही ये बड़े साहस का काम है। और लोगों के सामने घमंड से अपना मुंह टेढ़ा न करो और न धरती पर अकड़ कर चलो, निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शनिवार है, उर्दी बहिश्त की 10, रमजान की 28 और अप्रैल की 30 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से अवगत कराने के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.iribi.ir, जबकि ताजा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे रमजान के संबंध में हमारा विशेष कार्यक्रम और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा उज्ज्वल भविष्य। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहदी से विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान ने कहा है कि मुसलमान बैतुल मुकद्दस की आजादी से कोई समझौता नहीं कर सकते। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा है कि बैतुल मुकद्दस ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य एकता का रास्ता है। काबुल की मस्जिद में होने वाले आतंकवादी हमले में 10 नमाजी शहीद हो गए। जनरल नरवणे ने कहा है कि कश्मीर में हथियारों की खेप अफगानिस्तान से आती है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान के संसद सभापति ने विश्व कुद्स दिवस के अवसर पर आयोजित विशाल रैलियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुसलमान बैतुल मुकद्दस की आजादी से कोई समझौता नहीं करेंगे और वे अपने इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को विश्व कुद्स के अवसर पर ईरान सहित 90 से अधिक देशों में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैलियों का आयोजन किया गया और फिलिस्तीनियों पर इसराइल के अत्याचारों की निंदा की गई। ईरान के इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने मुसलमानों से रमजान के आखिरी जुमे को कुद्स दिवस के तौर पर मनाने का आह्वान किया था, ताकि साम्राज्यवादी ताकतें फिलिस्तीन के मुद्दे को ठंडे बस्ते में न डाल सकें। शनिवार को सदन को संबोधित करते हुए ईरानी संसद सभापति मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि मुसलमानों ने सड़कों पर निकलकर और फिलिस्तीन की आज़ादी में नारे बुलंद करके एक बार फिर ये संदेश दिया है कि फिलिस्तीनियों को भुलाया नहीं जा सकता और जानवी शासन का पतन निकट है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी जनता के प्रतिरोध ने इसराइल को मजबूर कर दिया है और बड़ी शक्तियों द्वारा समर्थन के बावजूद आज ज़ायोनी शासन किसी भी समय से अधिक कमजोर है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने विश्व कुद्स के उपलक्ष्य में अपने संदेश में कहा है कि बैतुल मुकद्दस ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य एकता का रास्ता है और उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्र की आकांक्षाओं के समर्थन पर बल दिया। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार निकोलस मादुरो ने कहा कि हमारा ईमान हमें एकजुट करेगा, बैतुल मुकद्दस हमें एकजुट करेगा और ये ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य एकता का रास्ता है। इस आधार पर हम अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले फिलिस्तीनी लोगों व जनता की आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने इसी प्रकार फिलिस्तीन में जानवी शासन के विस्तारवादी नीतियों की एक बार फिर भर्त्सना की और दोनों पक्षों का आह्वान किया कि वे वार्ता के माध्यम से मतभेदों का समाधान करें। वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने भी गत मंगलवार को फिलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ जानवी शासन के हमलों की भर्त्सना की थी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं का आह्वान किया था कि वे अवैध अतिक्रमण फिलिस्तीन में जो हिंसात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं उनके समाधान के लिए प्रयास करें। वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने भी पिछले सप्ताह एक विज्ञप्ति जारी करके मस्जिदुल अक्सा में फिलिस्तीनी नमाजियों पर जानवी सैनिकों के हमलों की भर्त्सना की थी। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हुसी का कहना है कि जो लोग जानवी शासन के साथ संबंधों को सामान्य बना रहे हैं उन्हें जल्द ही पछताना और नुकसान उठाना पड़ेगा। शुक्रवार की शाम कुद्स दिवस को उन्होंने इस्लामी जगत का एक महत्वपूर्ण विषय करार दिया और कहा, जो लोग आज इसराइल से गठजोड़ कर रहे हैं वे मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने कुरान में दुश्मन के साथ बर्ताव का तरीका बता दिया है। अल हुसी का कहना था कि जो लोग जानवी दुश्मन की मदद कर रहे हैं और उसके साथ संबंधों को सामान्य बनाने का समझौता कर रहे हैं उन्हें इसराइली अधिकारी दूध देने वाली गाय समझते हैं। इससे एक दिन पहले भी कुद्स दिवस की पूर्व संध्या पर अपने एक भाषण में अल हुसी ने कहा था कि ये दिवस लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए है, क्योंकि जानवी दुश्मन से मुकाबले का ये पहली शर्त है। इसराइली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को दो दिन के दौरान दो बार धमकी मिल चुकी है। गुरुवार को इसराइली प्रधानमंत्री के सबसे बड़े बेटे के नाम एक चिट्ठी पहुंची जिसमें एक गोली रखी हुई थी। मंगलवार को इसी तरह की धमकी भरी चिट्ठी के बाद इसराइली प्रधानमंत्री के परिवार को मिलने वाली ये दूसरी चिट्ठी थी। दोनों ही चिट्ठियों में बेनेट ने से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की गई है और ऐसा नहीं करने की स्थिति में गंभीर परिणामों की धमकी दी गई है। हारत्स की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार की धमकी की जांच के बारे में विवरण एक गुप्त आदेश के तहत रखा गया और पुलिस ने संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की। बेनेट की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री और उनके परिवार को मिलने वाली धमकियों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। फिलिस्तीनियों की फायरिंग में एक इसराइली सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। दो सशस्त्र फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक स्थित अवैध जानवी बस्ती के एक सुरक्षा गार्ड को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। जानवी सेना का कहना है कि शनिवार को तड़के अवैध अतिक्रमित वेस्ट बैंक में एक चेक पोस्ट पर कार सवार दो फिलिस्तीनियों ने सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग कर दी। इसराइल की MDA एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक सुरक्षा गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक कार अवैध अतिक्रमित बस्ती एरियल के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। कार से दो लोग उतरते हैं और चेक पोस्ट के अंदर बैठे दो सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर देते हैं। पोस्ट के अंदर बैठे दो सुरक्षा कर्मियों में से एक की मौत हो गई और दूसरा बच गया। हमलावर घटनास्थल से भागकर बच निकलने में सफल हो गए, जिसके बाद इसराइली सेना ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। केंद्रीय वेस्ट बैंक में स्थित एरियल बस्ती के आसपास के इलाकों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि कश्मीर में अफगानिस्तान से आने वाले हथियारों की खेप जब्त किए जाने के मामले बढ़े हैं। कीजिएगा हाल में संपन्न रायसीना डायलॉग 2022 में जनरल नरवणे ने कहा कि हथियारों, सैन्य उपकरणों, खासकर नाइट विजन उपकरणों को जब्त किए जाने के मामले बढ़े हैं। निसंदेह ये खेप अफगानिस्तान से आती है। जनरल नरवणे आज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए और उनकी जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने ले लिया है। नरवणे ने कहा कि अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होते ही ये आशंका होने लगी थी कि पाकिस्तान के रास्ते मुजाहिदीनों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी। पहले जब तालिबान सत्ता में आए थे तो उस वक्त कश्मीर में अफगानी गिरफ्तार किए गए और मारे गए थे। पिछले महीने जनरल नरवणे और अन्य शीर्ष सैन्य कमांडो ने पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने चीन के साथ लगी LC और पाकिस्तान से लगी LOC पर सेना की तैयारियों की चर्चा की। जनरल नरवणे ने कहा कि वो फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि भविष्य में होने वाले विवादों के लिए सेना मोर्चे पर पूरी मुस्तैदी से तैयार खड़ी है, ये हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी। भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि रूस को लेकर नई दिल्ली को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। डॉइचे वेले की रिपोर्ट के अनुसार थरूर का कहना था कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अपने पक्ष की वजह से आजकल भारत पश्चिमी मीडिया में सुर्खियों में है। इसकी एक वजह यह है कि भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है। कांग्रेस पार्टी के नेता का कहना था कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच ऐतिहासिक रिश्तों के बावजूद अब समय आ पहुंचा है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों की पुनः समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों में पश्चिम ने कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत को घेरने की कोशिश की है, इसलिए मॉस्को के बारे में हमारी नीति बदलनी चाहिए। इस महीने की शुरुआत में भी थरूर ने संसद में चीन और रूस के बीच बढ़ते सहयोग के मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि ऐसे स्थिति में हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हम रूस, चीन, पाकिस्तान को साथ खड़ा देख रहे हैं। इस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अहले सुन्नत की मस्जिद में होने वाले धमाके में कम से कम 10 नमाजी शहीद और 19 घायल हो गए। तालिबान ने इस आतंकवादी हमले की भर्त्सना करते हुए इसे मानवता विरोधी अपराध बताया है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान गुट के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की भर्त्सना की और रमजान के पवित्र महीने में इसे मानवता विरोधी अपराध करार दिया। जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करके कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में हमला मानवता विरोधी अपराध है और इस प्रकार के हमले का इस्लाम और मानवता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस विस्फोट में मारे जाने वालों के परिजनों से सहानुभूति जताई और बल देकर कहा है कि इस हमले के जिम्मेदारों की पहचान करके उन्हें दंडित किया जाएगा। अब पोस्ट समाचारों के अनुसार कल मस्जिद में होने वाले आतंकवादी हमले में शहीद होने वालों की संख्या 50 बताई गई थी। अभी तक किसी भी व्यक्ति या गुट ने विस्फोट की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि विस्फोट इतना भीषण था कि मस्जिद के आसपास की इमारतें हिल गईं। ये मस्जिद अफगानिस्तान के बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों की है। और अंत में ये समाचार कि सऊदी पुलिस ने पवित्र नगर मदीना स्थित मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इमरान खान की सरकार गिरने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के साथ सऊदी अरब के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनकी कैबिनेट में शामिल सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब का दावा है कि गुरुवार को मस्जिद नबवी में जियारत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के समर्थकों ने उन्हें घेरकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستوں، میں ہوں رویش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں۔ آج کے کاریکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے وشو قدس دیوس کے اوسر پر سنا سے فلسطینی نیتاؤں دوارا دیے گئے سندیش کے بارے میں۔
اس سال منائے جانے والے قدس وشو دیوس کی ایک وشیشتا،
اور پھر بات کریں گے وشو قدس دیوس کے سمبندھ میں پاکستان کے ورشٹھ ٹیکہ کار عمر ریاض عباسی کے وچاروں کے بارے میں،
مطلب فلسطین کے حوالے سے جو ایران میں،
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں سپریم کورٹ نے دھارا 370 اور آرٹیکل 35A کے سمبندھ میں جلد سنوائی کا اعلان کیا ہے۔
جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے اپ ادھیکش،
تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یمن میں منائے گئے انتراشٹریہ وشو قدس دیوس کے بارے میں۔ اس سال منائے جانے والے وشو قدس دیوس کی ایک وشیشتا یمن کی راجدھانی سنا میں آیوجت ہونے والی وشال ریلی تھی۔ اس سمبندھ میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی سید میسم۔
اس سال منائے جانے والے قدس وشو دیوس کی ایک وشیشتا یمن کی راجدھانی سنا میں آیوجت ہونے والی وشال ریلی کو فلسطین کے جہاد اسلامی کے نیتا خالد البتش اور حماس کے نیتا اسماعیل ہنیہ دوارا سمبودھت کرنا تھا۔ اسرائیل جس طرح سے یمن پر سعودی عرب اور یو ای کے حملوں سے لابھ اٹھانے کا پریاس کر رہا ہے، اور فلسطین کے مدعے کے سمادھان کے بنا ہی ان دیشوں کے ساتھ سمبندوں کو سامان بنانا چاہتا ہے، اس کا اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے فلسطین کے پرتیرودی گٹ یمنی جن آندولن ہنسار اللہ کے نزدیک چلے گئے ہیں، اور انہوں نے یمن پر حملہور دیشوں کے مقابلے میں ایک نیا فرنٹ بنانے کا سنکیت دے دیا ہے۔ دوسرے شبدوں میں جتنا حملہور اور آکرامک دیش ایک دوسرے سے نکٹ ہو رہے ہیں، اس کے مقابلے میں پرتیرودی گٹ بھی ایک ساتھ آ رہے ہیں اور ایک مضبوط مورچہ بنانے کا پریاس کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2015 میں یمن پر حملے کے لیے اسرائیل، امریکہ اور پشچیمی مافیا نے اناڑی اور غیر انوبوی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور یو اے ای کے کراؤن پرنس محمد بن زائد کو اکسایا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دونوں حملہور دیشوں نے یدھ اور قبضے کی وہی شیلی اپنائی جو زائنی شاسن فلسطین اور پڑوسی دیشوں میں اپناتا ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کا بھی یہی ارادہ تھا کہ وہ اس پڑوسی دیش پر قبضہ کر لیں گے اور اسے آپس میں بانٹ لیں گے، لیکن یمنی جنتا کے پرتیرودھ نے ان کے اس سپنے پر پانی پھیر دیا اور وہ یمن پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ حالانکہ جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ یدھ ورام کا الگھن کر رہے ہیں تاکہ یدھ کے سماپت ہونے اور شانتی کی استھاپنا کی استھتی میں ان سے ان علاقوں سے نکلنے کے لیے نہ کہہ دیا جائے۔ آج کھیتر کے اسلامی پرتیرودھی گٹ نہ کیول اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں بلکہ اس کے سمرتھک دیشوں کا بھی یہی حال ہے، اور انہیں بھی کھیتر میں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ پرتیرودھی گٹ کوئی سنیکت گٹھ بندھن بناتے، اپنے طور پر اپنی دشمن شکتیوں کو مات دے رہے تھے اور ان کے مقابلے میں رڑنیتک بڑھت بنائے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے تک اسرائیل کسی بھی بہانے سے غزہ پٹی پر حملہ کر دیا کرتا تھا، لیکن حالیہ ٹکراؤ کے دوران فلسطینی پرتیرودھی گٹوں کے راکٹوں نے تیل اویو تک لکشوں کو نشانہ بنا کر صاف سنکیت دے دیا کہ اب مار کر بھاگنے کے دن لد گئے ہیں۔ اسی طرح سے انصار اللہ نے یو اے ای اور سعودی عرب میں ہوائی اڈوں سمیت کچھ رنیتک لکشوں کو سفل روپ سے بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنا کر حملہور دیشوں کو سندیش دے دیا کہ اگر انہوں نے یمن کے خلاف اپنے اتیاچار اسی طرح سے جاری رکھے تو انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
और अब चर्चा करते हैं पवित्र रमजान के अंतिम शुक्रवार को इस बार भी पूरी दुनिया में मुसलमान और स्वतंत्रता प्रेमी सड़कों पर निकले और उन्होंने इसराइल से अपनी नफरत और घृणा का ऐलान किया। इस बारे में विचार सुनिए इस्लामाबाद में मौजूद वरिष्ठ पाकिस्तानी टीकाकार उमर रियाज अब्बासी के।
मतलब फलस्तीन के हवाले से जो ईरान में और इमाम इनकलाब ने जो सिलसिला शुरू किया है यूनिवर्सिटी के हवाले से, और ये जो है ये तो एक तारीखी जो है पैराए में अगर इसको देखा जाए तो फलस्तीन के अंदर जो है वो इस वक्त जो है इसराइली इस तरह से हमले कर रहे हैं कि ना उन्होंने माह रमजान का ख्याल किया है, ना उन्होंने शाबान से जो अब तक है तकरीबन जो है वो काफी यानी अटैक कर चुकी है। मस्जिद अक्सा के अंदर भी जो है वो नमाजियों के ऊपर हो चुका है, अफ्तार के टाइम में भी जो है वहाँ ऐसा कर चुके हैं। ये इस पूरी ताकत के साथ जो है इसराइल जो है वो फलस्तीन के ऊपर जो है वो लावार है, और ये बिल्कुल किसी को नजर नहीं आ रहा है, आलम इस्लाम को भी नजर नहीं आ रहा है, जो जमूर के चैंपियन इंसानियत के अलमबरदार बनते होने की नजर नहीं आ रहा है। वहां पर बमबारियां भी कर रहा है और वहां शहरियों को नेस्टेड है, शहरियों को शहीद भी कर रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ईरान ने जो ये इकदाम अलकुद के हवाले से आया है ये एक बहुत तारीखी अमल है, और इसका जो है फलस्तीनियों के अंदर भी बड़ा एहतराम है। फिर हम्मास जो है वो इस इकदाम को ईरान के इस अलकुद के यौम को जो है बड़ी खबर की निगाह से देखती है। आलम इस्लाम में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस हवाले से जो है बहुत ज्यादा जो है पढ़ा जाता है अलकुद के प्रोग्राम के लिए।
और अब रुख करते हैं भारत का और बात करते हैं कश्मीर के संबंध में भारत की सुप्रीम कोर्ट में पड़ी याचिकाओं की सुनवाई के बारे में आई अच्छी खबर के बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रमुख उमर अब्दुल्ला ने सर्वोच्च अदालत के निर्णय का स्वागत किया है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चिट्ठियों के बाद कश्मीर के हवाले से धारा 370 और 35A के पर याचिका सुनने के जो आदेश दिए हैं हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने भाजपा रजीम पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि इस रजीम ने जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार के तो बहुत दावे किए परंतु जमीनी सतह पर इसका कोई मेल नहीं खा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से लगाने की जरूरत थी परंतु उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
हमें इस बात का एहसास है कि कोविड के वजह से अदालतों में कार्रवाई पे असर पड़ा, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, हर लेवल पे अदालतों पे कोविड का असर पड़ा, और इस वजह से शायद हमारे 370 को लेके जो पटिशन्स हैं उन पे सुनवाई शुरू हो नहीं पाई। लेकिन हम इस बात का खैर मकदम करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि समर ब्रेक के बाद वो इस बेंच को, क्योंकि ये 5 जज बेंच के सामने इसकी सुनवाई होगी, तो वो बेंच जो है उसका ऐलान करके इसमें सुनवाई करेंगे। हम यही उनसे गुजारिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो। 2019 5 अगस्त के बाद बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाई गई हैं जो कि नहीं आनी चाहिए थी, और अगर इस जजमेंट में देरी हुई तो इन चीज़ों को फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे इस केस की सुनवाई हो, اور عدالت اپنا فیصلہ سنائے۔
اس بیچ جموں کشمیر پرشاسن نے کہا ہے کہ جہاں پر بھی شانتی میں بادہ ڈالنے کا پریاس ہوگا اسے آہنی ہاتھوں سے اسفل بنا دیا جائے گا۔ جموں کشمیر ایل جی پرشاسن نے کہا ہے کہ کل سری نگر کے اتہاسک جامع مسجد میں اس لیے نماز کی انومتی نہیں دی گئی کیونکہ گپچر ایجنسیوں کو یہ سوچنا یہ پراپت ہوئی تھی کہ یہاں پر شانتی میں بادہ ڈالنے کے لیے لوگ سکریہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایل جی پرشاسن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عام ناگرکوں کو سرکشا دینے کے ساتھ ساتھ شانتی کو بھی بحال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پرشاسن کال میں ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹنی چاہیے جسے عام ناگرکوں کو نقصان ہو۔ انہوں نے کہا کہ شانتی سے رہنے کا سبوں کو حق ہے، پرنتو جو شانتی میں بادھا ڈالنے کا پریاس کرے گا اس کے ساتھ قانون کے انوسار سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسا گھٹناؤں کا کرم بھی جاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دکشنی کشمیر میں ایک بار پھر سرکشا بلوں کے ساتھ مڑ بھیڑ میں دو الگاؤں وادی چھاپہ مار ہتھات ہوئے، جن کے نینترن سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
شروتاؤں، راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، ہماری آج کی سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا اجول بھوش، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے پوتر مہینے رمضان کے اوسر پر پیش کیے جانے والے وشیش کاریکرم کی ایک ان کڑی۔
ایشوریے آتتھ،
شروتو، رمضان کی 28ویں تاریخ ہے، وشیش کاریکرم ایشور آتتھ لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ سید میسم اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، 28 رمضان کی دعا اور اس کا انواد سنیے۔
اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغله الحاح الملحین۔
ہے خدا، اس مہینے میں میرے مستحب کاموں میں وردی کر اور میری دعاؤں کو سویکار کر کے میرا سمان بڑھا، مجھے اپنی نکٹتا پردان کر۔ ہے وہ کہ جسے آگرہ کرنے والوں کا آگرہ کٹھور نہیں بناتا ہے۔
رمضان کا سندر مہینہ اپنی سمست برکتوں کے ساتھ سماپت ہو رہا ہے، لیکن اس کی خوشبو ہماری زندگیوں میں باقی رہ جائے گی۔ جن لوگوں نے اس مہینے میں خدا کی بندگی کی، مٹھاس کا سواد چکھا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، وہ خوشحال ہیں۔ اسی کے ساتھ انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ یہ نورانی لمحے سماپت ہو رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واسطو میں اس مہینے کا کتنا مہتو تھا اور اس مہینے میں خدا کی عبادت سے کتنی خوشی پراپت ہوتی تھی۔
آج لوگ جس چیز کی اپنے جیون میں زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں وہ خوشحالی ہے۔ آج کل پشچم نے لوگوں کے منورنجن کے لیے کئی طرح کے اپکرن اپلبدھ کرا دیے ہیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ ان کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اوسات کا آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ تناؤ بھرا جیون ویتیت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پشچمی سنسکرتی میں دکھاوٹی شور شرابہ زیادہ ہے، لیکن بھیتر سے وہ کھوکھلی ہے۔
اسلام میں جو چیز دل اور آتما کی شانتی کا کارن ہے وہ خدا کی یاد ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، جان لو خدا کی یاد دلوں کو شانتی پردان کرتی ہے۔ خدا کی یاد سے شانت ہونے والے ان دلوں کی خوشی اللہ کی بندگی اور لوگوں کی سیوا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق مومنوں کے دلوں کو خوش کرنے کا ایک دوسرا ذریعہ صدقہ یا دان دینا ہے۔ صدقہ دینے سے زندگی میں بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہے، ان میں سے ایک خوشحال جیون ہے۔
اسلام دان دینے پر کافی بل دیتا ہے تاکہ دھن وترن میں سنتولن بن سکے۔ دان اس سمے اپنے شکر پر ہوتا ہے جب انسان اپنی پسندیدہ چیز کو دان دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دوسروں کی اس سمے مدد کرنی چاہیے جب انہیں خود کو ضرورت نہ ہو۔ حالانکہ واستوک بھلے لوگوں کے استھان تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی پسندیدہ چیزوں کو دان میں دینا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں الیکھ ہے، کداپی واستوک بھلے لوگوں تک نہیں پہنچو گے، یا یہ کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اسے ایشور کے مارگ میں دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کو خود سے ادھک پسند کرتے ہیں اور جو چیز آپ کو پسند ہے وہ انہیں اپہار میں دے دیتے ہیں۔
رمضان کے مہینے کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس مہینے میں غریبوں اور نردھنوں کو دان دو، اپنے بڑوں کا سمان کرو اور اپنے چھوٹوں پر دیا کرو، اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھو، اپنی زبان کو سرکشت رکھو اور اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں پر نظر نہیں ڈالو، حرام بات سننے سے بچو، دوسرے لوگوں کے اناتھوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تاکہ وہ تمہارے اناتھوں سے محبت کریں، اور ایشور سے اپنے پاپوں کے لیے توبہ کرو۔
رمضان شمع کے سویکار ہونے اور ایشور کی اور پلٹ کر جانے کا مہینہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنے جیون میں پاپ کیے ہیں وہ روزے دوارا اپنا شدھی کرن کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے پریجنوں کے انوسار اس مہینے میں پاپ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی شبھ سوچنا ہے کہ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ نسندہ جو پاپی اپنے پاپوں پر شرمندہ ہیں، اگر وہ اس مہینے میں ایشور کے لیے روزہ رکھیں اور اپنے کرتیوں کے لیے توبہ کریں تو ایشور ان کے پاپوں کو معاف کر دے گا۔
اس پوتر مہینے میں سبھی کو ایکانت میں وچار کرنے کا اوسر حاصل ہوا ہوگا۔ اس مبارک مہینے کی سحری اور افطار نے ہمیں اس بات کے لیے پریرت کیا کہ ہم تھوڑا اپنے آچرن اور ویوہار کے بارے میں چنتن کریں۔ حالانکہ سال بھر ایسا کرنا اچھا ہوگا۔ اسلام میں اپنے کاریوں کے حساب کتاب پر بہت بل دیا گیا ہے۔ دھارمک شکشاؤں میں سفارش کی گئی ہے کہ ہر ویکتی کو دن میں کوئی سمے اپنے کاریوں میں چنتن کرنے کے لیے نردھارت کرنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کی دقت سے سمیکشا کرنی چاہیے۔ اس نرنتر سمیکشا کو آتما آکلن کہا گیا ہے۔ اس آکلن میں ہر شخص دنیا کے شور شرابے سے دور اپنے کاریوں کو اپنے وویک کی ترازو میں تولتا ہے۔
پیغمبر اسلام اپنے سچے اور وفادار ساتھی ابوذر غفاری کو اپنی ایک نصیحت میں کہتے ہیں، ہے ابوذر، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے آتما آکلن کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے پرلے کے دن کا تمہارا کام آسان ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کہ تمہاری سمیکشا کی جائے خود اپنی سمیکشا کرو اور خود کو پرلے کے دن کے لیے تیار رکھو، کیونکہ اس دن کچھ بھی گوپنیہ نہیں رہے گا۔
رمضان مبارک کے انتیم دن وشیش دن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام عید کی نماز کے خطبے میں رمضان کے انتیم دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ہے ایشور کے بندو، جان لو کہ سب سے کم اور نکٹتم چیز جو روزے دار مہیلا اور پرشوں کے لیے اپلبدھ ہے یہ ہے کہ رمضان کے انتم دن ایک فرشتہ انہیں پکار کر کہے گا، ہے ایشوریہ بندو، تمہارے لیے شبھ سوچنا ہے کہ تمہارے گناہ ارتھات پاپ معاف کر دیے گئے और अब ये देखो कि भविष्य में कैसे रहना पसंद करोगे।
रमज़ान मुबारक के अंतिम दिनों में एक महत्वपूर्ण कार्य इस महीने में अंजाम दिए गए कामों की समीक्षा करना है। ईमान रखने वाले इंसान को इस महीने के शुरू से अपनी इबादतों का हिसाब करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ईश्वर की मेज़बानी के आरंभ और उसके समक्ष उपस्थित होते समय कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया है। ईश्वर और धर्म और उसके दूतों के बारे में उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, ईश्वर के आदेशों का किस प्रकार पालन किया है और ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न किया है। ईमान रखने वाला इंसान ये देखता है कि इस महीने में परलोक के लिए कितनी पूंजी एकत्रित की है। अब जबकि ये महीना समाप्त हो रहा है, इबादत के प्रति उसकी रुचि में वृद्धि हुई है या उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
अगर रोजेदार इस महीने में अपने भीतर किसी परिवर्तन का आभास नहीं करे तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि ये स्वयं उसकी गलती है, इसलिए कि रमजान ईश्वर की अनुकंपाओं और रहमत का महीना है और इस महीने में आसमान के द्वार जमीन वालों के लिए खुल जाते हैं। अतः वो कितना आलसी बंदा है कि जो ईश्वरीय बरकतों और रहमतों में से कुछ भी हासिल नहीं कर सका। अगर ये सही है तो इंसान को ईश्वर से दुआ करना चाहिए कि उसके पापों को क्षमा कर दे और अपनी असीम रहमत से उस पर दया करे।
रमजान मुबारक व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता में सुधार का बेहतरीन अवसर है। अगर इंसान इस महीने में अपने व्यवहार पर नजर डाले और नैतिकता को अपने मन में बसा ले तो इस महीने के बाद भी वो इसे जारी रख सकता है। इन नैतिकताओं में से एक अपने मातहतों के साथ अच्छा बर्ताव करना है। इस्लामी शिक्षाओं में अपने अधीन लोगों के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार न करने को ईमान वालों का गुण और अपने अधीन लोगों पर अत्याचार करने को नादान लोगों की विशेषता करार दिया गया है। पैगंबर इस्लाम ने इस संदर्भ में फरमाया है, इस महीने में जो कोई भी अधीन लोगों के साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करेगा ईश्वर उसके साथ विनम्रता से पेश आएगा।
इफ्तार के वक्त दुआ पढ़ने का काफ़ी महत्व है। इफ्तार का समय दुआओं के कबूल होने के लिए बेहतरीन समय है। हज़रत अली इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, हे ईश्वर, हमने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया, हमारी इस इबादत को स्वीकार कर, निसंदेह तू ज्ञानी और सुनने वाला है। इफ्तार के वक्त सूरह क़द्र की तिलावत की सिफारिश की गई है। इफ्तार के वक्त दान करना, चाहे कुछ खजूरें या शरबत ही क्यों ना हो, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं, रमज़ान के महीने में जो कोई किसी दूसरे को खाना खिलाएगा ईश्वर उसे 30 गुलामों को आज़ाद करने का सवाब देगा और उसकी एक दुआ स्वीकार करेगा।
हम खुदा से दुआ करते हैं कि इस पवित्र और आध्यात्मिक महीने के सुंदर क्षणों में हमें अहले बैत और महान धार्मिक हस्तियों के अनुसरण का अवसर प्रदान कर और हमें ईमान का असली स्वाद चखा दे, हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान कर और दुनिया में हमारे गौरव में इजाफा कर दे, हमारे अंदर गरीबों और ज़रूरतमंदों से मोहब्बत और उनकी मदद करने की भावना जगा दे और दुनिया और आखिरत में हमारा कल्याण कर।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। स्वाति और मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार करें। इस कार्यक्रम में हम ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद देश में बुनियादी ढांचे के विकास की चर्चा करेंगे।
दोस्तों, ईरान की इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों के बारे में चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान के दुश्मनों ने इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान की छवि खराब करने का बहुत प्रयास किया है और कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने देश के पिछड़े इलाकों के विकास और इन इलाकों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में रचनात्मक प्रयास संस्था की भूमिका का जायजा लिया था। इस संस्था की भूमिका केवल ग्रामीण और पिछड़े हुए इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध शुरू होने के बाद इस संस्था ने युद्ध इंजीनियरिंग, पुलों के निर्माण और बंकरों के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई है। 8 वर्षीय युद्ध के दौरान इस संस्था के सेवकों को बिना बंकर वाले निर्माणकर्ताओं का नाम दिया गया था।
हमने उल्लेख किया था कि रचनात्मक प्रयास संस्था की गतिविधियां सिर्फ 8 वर्षीय युद्ध तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि युद्ध के बाद भी उसने देश के बुनियादी ढांचे के विस्तार में अपनी भूमिका निभाई। इस संस्था ने देश को आर्थिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए एक बड़ी वर्कशॉप में बदल दिया। बिजली के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में इस्लामी क्रांति के शुरुआती वर्षों में 3 मिलियन और 3,99,000 ग्राहकों की संख्या की तुलना में अब यह संख्या 37 मिलियन से अधिक ग्राहकों तक पहुंच चुकी है। क्रांति की शुरुआत में 4,367 गांवों में बिजली की आपूर्ति होती थी, जबकि अब 58,000 गांवों तक बिजली पहुंच गई है। इसका मतलब है कि न केवल सभी शहरों तक बल्कि 99% से अधिक ईरानी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।
इसके अलावा ईरान बिजली का निर्यात करने वाले देशों में शामिल हो चुका है और सौर ऊर्जा संयंत्र प्रौद्योगिकी के मामले में तीसरे देश के रूप में अपना स्थान बना चुका है। जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण कारणों के फलस्वरूप पानी की आपूर्ति के साथ साथ आर्थिक प्रगति के मापदंडों में से एक जलाशय बांधों का निर्माण करना है। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद जनसंख्या में वृद्धि और पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत बड़े बांधों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। वर्तमान समय में ईरान बांध उद्योग में आत्मनिर्भरता और इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा उसने एक महत्वपूर्ण और बुनियादी उपलब्धि हासिल करते हुए अध्ययन, डिजाइन, पर्यवेक्षण, निर्माण, प्रबंधन और जलाशय के संसाधन के सभी चरणों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, जो योग्य इंजीनियरों के प्रयास का नतीजा है। वर्तमान में ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांध निर्माण देश है, जिसके पास बड़ी बांध निर्माण परियोजनाओं को लागू करने और अन्य देशों को बांध इंजीनियरिंग सेवाओं का निर्यात करने की क्षमता है।
इस्लामी क्रांति से पहले और उसके बाद के दौर में बांध निर्माण आंकड़ों की तुलना बहुत दिलचस्प है। क्रांति से पहले देश में 19 बांध थे, जिनकी 13 बिलियन क्यूबिक मीटर के जलाशय और 14 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष के जल प्रबंधन की क्षमता थी, लेकिन क्रांति के बाद और 2016 तक यह संख्या 165 तक पहुंच गई, यानी बांधों की क्षमता में 51% की वृद्धि हुई और यह 37 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई। इसी प्रकार देश में 150 और 124 बांध क्रमशः अध्ययन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः 23.7 और 21.6 बिलियन क्यूबिक मीटर है। बांधों की संख्या में वृद्धि से अधिक जमीनों की सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है और परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में से है जिन्हें इस्लामी क्रांति के बाद पुनर्जीवित किया गया है। मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में श्वेत क्रांति जैसी गलत नीतियों के कारण ईरान का कृषि क्षेत्र लगभग नष्ट हो गया था और ईरान एक बड़ा आयातक देश बन गया था। इस्लामी क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र पर इस्लामी व्यवस्था के विशेष ध्यान के कारण ईरान गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बन गया। आज 90% से ज्यादा कृषि उत्पादनों का उत्पादन देश में होता है। उदाहरण स्वरूप 2020 में ईरान में 14 मिलियन टन गेहूं की पैदावार हुई है। हालांकि क्रांति से पहले तक देश में 11,40,000 टन गेहूं आयात किया जाता था।
आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक औद्योगिक स्वाधीनता है। इसका अर्थ यह है कि एक देश विभिन्न औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन गया है। दुर्भाग्य से क्रांति से पहले ईरान 5.5 मिलियन बैरल से अधिक तेल का निर्यात करता था और इससे भारी राजस्व प्राप्त करता था, लेकिन इसके बावजूद विदेशों पर निर्भर था। अधिकांश औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति विदेशों से की जाती थी। ईरान की राजशाही व्यवस्था को उद्योग और कृषि क्षेत्रों में निवेश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दरबारियों के हितों के लिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी उत्पादों का आयात किया जाता था। जिन क्षेत्रों में सीमित पैमाने पर निवेश किया भी जाता था तो वे भी असेंबलिंग पर ही निर्भर थे। इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। सीमेंट का उत्पादन 6.3 मिलियन टन से बढ़कर 80 मिलियन टन और खनिज उत्पादन 20 मिलियन टन से बढ़कर 220 मिलियन टन से अधिक हो गया।
विभिन्न प्रकार के हल्के और भारी वाहनों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया गया। घरेलू जरूरत की वस्तुओं के निर्माण के लिए कारखानों की स्थापना और उपकरणों को विकसित करना प्रगति के अन्य उदाहरण है। पिछले 3 दशकों में रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों की वृद्धि और विकास और 40 से अधिक बड़े तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल केंद्रों का निर्माण इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद देश के बुनियादी ढांचे के विस्तार का हिस्सा है। इसके अलावा इन कदमों से तेल उद्योग में देश की आत्मनिर्भरता 4% से बढ़कर 80% तक पहुंच गई, जबकि पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्रांति के प्रारंभिक वर्षों में 4 मिलियन टन से 2021 में बढ़कर लगभग 100 मिलियन टन पहुंच गया। स्टील एक रणनीतिक उत्पाद है और इसे दुनिया भर में मूल उद्योग के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्टील संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 70 से कम देश स्टील उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय है। बिना उद्योग वाले देशों को या तो विकास से हाथ धोना पड़ेगा या उन्हें उत्पादक देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस्लामिक क्रांति से पहले तक ईरान में 5,00,000 टन प्रतिवर्ष स्टील का उत्पादन होता था, जो उसके बाद बढ़कर 38 मिलियन टन तक पहुंच गया। इस प्रकार इस उल्लेखनीय वृद्धि से ईरान दुनिया का 4वां सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में स्टील उत्पादन विश्व औसत का 18 गुना हो गया है, जो इस रणनीतिक उत्पादन के एक आश्चर्यजनक छलांग है।
स्टील के बाद एल्युमिनियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातुओं में से एक है और करीब सभी उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। परिवहन, पैकिंग, निर्माण, इलेक्ट्रिक उपकरणों के उत्पादन में इस्तेमाल, बिजली का लाइनों में इस्तेमाल समेत एल्युमिनियम का विभिन्न क्षेत्र में काफी महत्व है। 2020 में एल्युमिनियम उत्पादन के मामले में ईरान दुनिया में 18वें स्थान पर था। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक वृद्धि और विकास के मुख्य संकेतकों पर ध्यान देना जरूरी है। सकल घरेलू उत्पादन किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंडों में से एक है, जो अर्थव्यवस्था के आकार और उसकी उत्पादक शक्ति को निर्धारित करता है।
1977 में ईरान के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 119,000 बिलियन तुमान का था, जो 2014 में 203,000 बिलियन तुमान तक पहुंच गया। वास्तव में इन वर्षों के दौरान ईरान की अर्थव्यवस्था का आकार 1.7 गुना बढ़ गया है। समस्याओं, बाधाओं, थोपे गए युद्ध और प्रतिबंधों के बावजूद इस्लामी क्रांति ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और मूल्यवान उपलब्धियां हासिल की है। इस प्रकार से कि लोगों के जीवन में आने वाले बदलाव की तुलना क्रांति से पहले की आजीविका से नहीं की जा सकती। देश के विभिन्न भागों में विकास और प्रगति, विभिन्न देशों में आत्मनिर्भरता हासिल करना और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाओं से क्रांति के प्रभाव और आर्थिक विकास का पता चलता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दें।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान ने कहा है कि मुसलमान बैतुल मुकद्दस की आजादी से कोई समझौता नहीं कर सकते। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा है कि बैतुल मुकद्दस ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य एकता का रास्ता है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदाफिज, शुभरात्रि।